पर रेडियो प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत।
इस हफ्ते की श्रोता साथी हैं अनूपपुर मध्य प्रदेश की जय मंत्री केवट और इनसे बातचीत कर रही हैं सुजाता शुक्ला।
नमस्कार, अर्पा रेडियो 90.8 एफएम पर मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुजाता शुक्ला। सप्ताह के श्रोता, इस कार्यक्रम में आज हम मिलवाने जा रहे हैं हमारी खास श्रोता जय मंत्री केवट जी से। उनके जीवन से जुड़ी बातें और उनके पसंद के गीतों के साथ हम शुरू करते हैं उनसे बातचीत का सिलसिला। जय मंत्री जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
नमस्कार, आप सब सुनने वाले जितने भी भाई बहन हैं सभी को नमस्ते, सुख संध्या, प्रणाम।
जय मंत्री जी, आप रेडियो की सुधी श्रोता हैं, है ना? हमें बताइए ये रेडियो से आपका जुड़ाव कब हुआ और कैसे हुआ?
हाँ, रेडियो से जुड़ाव मेरी 1985 से हुई। मेरे पिताजी रेडियो सुना करते थे जिसमें मैं चोरी छिपे कार्यक्रम सुनती थी और मेरी जुड़ाव बन गई। मैं आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम किसले और बाल वाटिका से प्रभावित हुई थी। जी,
इसके अलावा आप रेडियो के कौन कौन से स्टेशन सुनती हैं और हमारे अर्पा रेडियो के कार्यक्रम आपको कौन कौन से अच्छे लगते हैं?
हाँ, इसके पहले मैं आकाशवाणी दिल्ली के कार्यक्रम सुनती थी और मुंबई के कार्यक्रम, विविध भारती के सारे कार्यक्रम तो नहीं सुन पाती थी, लेकिन सखी सहेली, मन चाहे गीत और SMS के बहाने BBS के तराने सुनती थी। आकाशवाणी रायपुर के यादें, सुरों का सफर, आप मन के गीत, ये सारे कार्यक्रम सुनती थी।
अच्छा, और
अर्पा रेडियो के कार्यक्रम में मैं सुनती हूँ अनीस के संविधान मन के पसंद, सप्ताह की श्रोता सुनती हूँ। बहुत अच्छा लगता है अनिस जी की बातचीत, उनके कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अंदाज इतनी खूबसूरत होती है जिसकी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ।
चलिए, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से अनिस जी ने आपकी बात सुन भी ली होगी और उन्हें अच्छा भी लग रहा होगा। और सच में जब श्रोता हमारे किसी कार्यक्रम को पसंद करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा ये कार्य सार्थक हो गया है, है ना?
जी जी।
जय मंत्री जी, आपके बारे में हम जानना चाहते हैं कि आप क्या करती हैं, आपके घर में कौन कौन है और वो क्या क्या करते हैं?
जी, मैं सबसे पहले तो एक माँ हूँ, मेरी 3 बेटियां हैं, मेरी सासू माँ है, मेरे पति हैं, हम घर में 5-6 सदस्य होते हैं और देवरानी जेठानी, 4 देवरानी जेठानी है लेकिन दूसरी जगह रहते हैं सभी, और अच्छा प्रेम व्यवहार है हम सब लोगों का।
अच्छा, और आपके पति देव क्या करते हैं?
मेरे पति देव खेती का काम करते हैं।
अच्छा, तो चलिए आपके जीवन से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें हम जानना चाहेंगे। पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
फिल्म खानदान है, गीत के बोल है, नील गगन पर उड़ते बादल आ आ आ, आ। धूप में जलता खेत हमारा, कर दे तू छाया।
बहुत ही प्यारा गीत है, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
नील गगन पर उड़ते बादल आ आ आ, धूप में जलता खेत हमारा, कर दे तू छाया।
छुपे हुए ओ चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना, पक जाए तो खा।
नील गगन पर उड़ते बादल आ, धूप में जलता खेत हमारा, कर दे तू छाया।
छुपे हुए ओ चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना, पक जाए तो खा।
बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी, चूम न ले कहीं पाँव तेरे ओ खेतों की रानी।
चूम के मेले पाँव मेरे वो भी होगा मेला,
गगन पर उड़ते बादल आ आ आ। धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। ऊपर वाला खोल के रखियो अपनी झोली भर देगा दादा।
छुपे हुए ओ चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा।
नील गगन पर उड़ते बादल आ आ आ, धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया।
एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है जय मंत्री जी हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सप्ताह के श्रोता। जय मंत्री जी, आपने अभी बताया कि आप शिक्षिका हैं, है ना
जी।
तो छोटे बच्चों को पढ़ाना आपको कैसा लगता है और कौन सी क्लास को आप पढ़ाती हैं? डांटती वाटती हाँ। तो नहीं है?
हाँ, छोटे बच्चे को पढ़ाना बहुत ही अच्छा लगता है और मैं 3-4-5 क्लास को सभी विषय पढ़ाती हूँ। मेरे सहयोगी है टीचर तो वो 1-2 क्लास को पढ़ाते हैं। साथ ही बच्चों को डांटना तो ये स्वाभाविक है, उनकी गलती पर डांटी जाती है, लेकिन बच्चों को पाठ से जोड़ने से पहले उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें गीत कविता के माध्यम से कुछ कहानी आसपास के घटनाओं को बताकर ही आकर्षित किया जाता है और उन्हें ध्यान आकर्षण करना होता है, अपनी तरफ खींचना।
बिल्कुल, मनोरंजन करके यदि बच्चों को पढ़ाया जाए तो बच्चे बहुत ही रुचि के साथ अपनी पढ़ाई करते हैं, है ना
जी।
जय मंत्री जी, आप अनूपपुर के पास रहती हैं, है ना जी। तो अनूपपुर में ही है अमरकंटक यानी नर्मदा नदी का उद्गम स्थान, कभी वहाँ जाना हुआ है
जी? नर्मदा नदी का दर्शन मैंने बहुत पहले से करते आ रही हूँ। माँ नर्मदा नदी प्रमुख नदियों में से एक है, वो भारत की नदियों में 5वीं नदी है जो मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले से सतपुड़ा मैकल पर्वत से निकलती है, नर्मदा कुंड से निकली है। ये नदी गुजरात के भरूच जिले के पश्चिम में खंबात की खाड़ी में गिरती है और अंत में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। नर्मदा नदी के बारे में जितना भी बोलूं वो बहुत ही कम है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, नर्मदा नदी में कई जलप्रपात हैं, जैसे धुआंधार जलप्रपात जो जबलपुर में है, भेड़ाघाट के नाम से प्रसिद्ध जानी जाती है, कपिल धारा है नर्मदा नदी में जलप्रपात, और दूध धारा भी है, और माँ की बगिया है, और सबसे बड़ी बात तो वहाँ की एक मंदिर है कल्याण आश्रम नाम से प्रसिद्ध है। उसकी मतलब वो मंदिर की आरती 8 बजे शुरू होती है, आप कभी भी आए तो उस भव्य आरती को देखकर सुनकर आनंद लीजिए। कभी भी माँ नर्मदा की उपनाम है मैकल सुता संकरी जो शिवा की पुत्री है, रेवा सोगो सोमदेव नर्मदा नमादोस आदि नाम से जानी जाती है। माँ नर्मदा पर बहुत बांध बने हैं जिन्हें मैं नाम लेना चाहती हूँ, इंदिरा सागर बांध जो ये खंडवा जिले में है, सरदार सरोवर बांध जो सोनगढ़ गुजरात में है, ओमकारेश्वर डैम मध्य प्रदेश में है, महेश्वर बांध जो खरगोन में है, बरगी बांध मध्य प्रदेश में है। ये सारे बांध और जलप्रपात मनमोहक देखने से यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो देखने योग्य है। माँ नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी जो गंगा गोदावरी कृष्णा यमुना नर्मदा है। मध्य प्रदेश को नदियों की माइका भी कहा जाता है।
अच्छा
मैडम जी,
कैसे?
तो अभी अभी एक भाई सवाल किए थे कि गंगा सप्तमी क्या है। एक त्योहार आती है गंगा सप्तमी की जो बैसाख माह में आती है, तो सप्तमी को इस दिन माँ नर्मदा के यहाँ सभी जितने भी देवी देवताए हैं वो आते हैं, मतलब पृथ्वी पर आते हैं,
अवतरित होते हैं।
हाँ हाँ हाँ, पहले आए थे, अभी भी आते होंगे लेकिन हमें दर्शन नहीं देते।
जी जी।
और मैं हर बार माँ नर्मदा का जिक्र माँ कहकर क्यों कह रही हूँ, एक सच्ची घटना आपको बता दूं।
बिल्कुल बताइए, हम भी जानना चाहेंगे।
जी, मेरी शादी के बाद 8 साल हो गए थे, मुझे संतान सुख प्राप्त नहीं हो रही थी, तो मेरी दादी माँ बोले कि तुम माँ नर्मदा के दर्शन करो, नर्मदा के दर्शन करो तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त होंगे। और मेरी दादी माँ मुझे ले गई और मैं वहां मन्नत मांगी, तो मुझे अक्टूबर 2000 में मुझे पुत्री प्राप्त हुई, और एक पुत्री नहीं मुझे 3 पुत्रियां प्राप्त हुई। तो मैं उन 3 पुत्रियों को माँ नर्मदा के स्वरूप ही मानती हूँ, ऐसा है।
बहुत 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 अच्छी बात आपने बताई जयमंत्री जी, और ये सही बात है कि सच्ची प्रार्थना अगर हम ईश्वर के सामने करें तो वो जरूर पूर्ण होती है ना। और आप भी माँ नर्मदा के पास उनके स्थान पर गईं और उनसे आपने प्रार्थना की और वो पूर्ण भी हुई। तो हमेशा कहते हैं कि यदि सच्ची प्रार्थना की जाए तो वो जरूर पूरी होती है। आपसे बात करना बहुत अच्छा लग रहा है जयमंत्री जी, इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। पहले बताइए हमारे इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
हाँ, फिल्म का नाम है सफर, जो 1970 में आई थी। गीत के बोल है, ओ नदिया चले चले रे धारा, तुझको चलना होगा, ये गीत है।
बहुत ही प्यारा गीत है।
ओ नदिया चले चले रे धारा, चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा,
तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आधी से चुंबा से चलता नहीं है, तू न चलेगा तो चलने की राह है, ओ तू न चलेगा तो चलने की राह है, मंजिल को कर से
मैं जब यहाँ आता हूँ आकर घंटों बैठ जाता हूँ और देखते रहता हूँ इस नदी के बहते हुए पानी को, ये चौड़ा पाट और दो किनारे जो हमेशा एक दूसरे से उतने ही दूर, कि मां जी ये कश्ती और ये लहरों पे लहराता हुआ नाचता हुआ गीत, मैं जब भी इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा इनके साथ बहुत पुराना मेल है, जैसे इस धारा के साथ मुझे भी कहीं और जाना है, कहीं दूर जाना है, जैसे मुझे भी किसी नाव का इंतजार है, किसी माँ जी की जरूरत है।
नाव तो क्या बह जाए किनारा, जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा,
तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा,
चले चले रे धारा चंदा चले चले रे तारा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा
तुझको चलना होगा तुझको चलना
FM अर्पा रेडियो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। हमारी आज की श्रोता हैं जय मंत्री जी अनूपपुर से। जय मंत्री जी, आप बहुत ज्ञानी हैं, आपने इतनी सारी ज्ञान की बातें हमें माँ नर्मदा के बारे में बताया, और हर इंसान की कोई ना कोई खूबी जरूर होती है ना, तो आपकी रुचि किस क्षेत्र में है जहाँ आपको कभी गौरव का भी अनुभव हुआ हो, ऐसी कोई बात अगर आपके जीवन में घटित हुई हो तो हमें जरूर बताइए।
मेरी रुचि है, सबसे पहले तो मुझे अच्छी पढ़ाई करना, बचपन से मैं यही सोचते आई हूँ कि अच्छी पढ़ाई करूँ। मेरे पिताजी के भी यही कामना थी कि मेरी बेटी पढ़े और अच्छे पद पर रहे। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ बागवानी का काम करती हूँ, खेती का काम भी करती हूँ, और साथ ही एक घर गृहस्थी संभालने का काम भी करती हूँ।
अच्छा, तो आप खेती किसानी भी करती हैं एक शिक्षिका होने के साथ साथ, ये कैसे कर पाती हैं?
जी, खाली समय में मैं सहयोग करती हूँ अपने पति को, और बाकी स्कूल टाइम में स्कूल का काम करती हूँ। मुझे सिर्फ मार्गदर्शन देना होता है और व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। मैं जैविक खेती अपनाना सीखा 2003 से। जैविक खेती जब से मैंने की है तो एक अच्छे किसान के तौर पर अच्छी पैदावार भी प्राप्त हुई है, और वर्ष 2007 में मुझे महानिदेशक ग्रेश कुजूर जी की अध्यक्षता में आकाशवाणी महानिदेशक के तौर पर उन्होंने अच्छी खेती जैविक खेती लाभ के उसमें मुझे प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था, जो आज भी मेरे पास।
ये तो बहुत ही अच्छी बात है जय मंत्री जी, आप एक प्रगतिशील महिला हैं, शिक्षा के साथ साथ आप खेती किसानी में भी रुचि रखती हैं, ये जानकर हमको बहुत अच्छा लग रहा है
जी।
है ना, और जब सफलता मिलती है तो मन में उत्साह और अधिक आ जाता है
जी,
है ना
जी।
तो आप घर और बाहर का कार्य दोनों बखूबी संभाल रही हैं, तो दोनों जगह के कार्य एक साथ आप कैसे संभाल पाती हैं, हमारे श्रोताओं को बताइए।
हाँ, दोनों एक साथ नहीं हो पाते। सबसे पहले तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी जिस पद पर हूँ उस पद की गरिमा को बनाए रखूं, और दूसरी बात ये है कि मैं अपने परिवार की देखभाल के लिए, उनके पालन पोषण के लिए, खेती का काम करके उनके जीवन यापन के लिए अच्छा अनाज पैदा कर सकूं और उन्हें अच्छे भोजन की व्यवस्था कर सकूं।
बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, और दोनों अगर दोनों जगह पर एक महिला ही है जो बखूबी अपना कार्य कर सकती है, अच्छे से निभा सकती है, और वो आप कर भी रही हैं बखूबी, है ना। तो आज के समय में नारी और पुरुष दोनों बराबर का स्थान रखते हैं, है ना
जी।
तो हम चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, पहले बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप इस कार्यक्रम में।
आप आए बाहर आई कोयल क्यों गाए, ये गीत है
जी, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
कोयल क्यों गाए, कोयल क्यों गाए, कोयल क्यों गाए, कोयल क्यों गाए। Thank you.
ये जब जीत कोई गाए रे तो आग लग जाए, रिम जिम पानी बरसाए, आकाश पे बादल छाए। तेरी मोरनी सी चाह, हाँ तुझसे पूछूं पूछूं मैं एक छोटा सा सवाल, बाजे क्यों घुंघरू, बाजे क्यों घुंघरू।
कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज के श्रोता हैं जय मंत्री केवट जी और इनसे बातचीत कर रही हूं मैं यानी सुजाता शुक्ला। जय मंत्री जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी बातें हमने आपसे जानी कि किस तरह से आप एक शिक्षिका हैं और किस तरह से आपको नर्मदा नदी के बारे में ज्ञान है। आप ये बताइए कि अनूपपुर के पास ही है पेपर मिल, है ना, अमलाई का,
जी, हाँ,
जिसे ओरिएंट पेपर मिल के नाम से जाना जाता है। कभी वहाँ जाना हुआ है आपका?
जी मुझे जाना हुआ है, मुझे दो बार मौका मिल चुकी है। पेपर मिल अमलाई के बारे में भी मैं जितना बोलूं कम है। हम जो भी पेपर सुबह से लेकर अखबार यूज करते हैं या फिर लिखने पढ़ने पेपर जहाँ जहाँ कागज का उपयोग होता है, आज तो इंटरनेट का जमाना है तो कुछ कागज का दौर कम हो चुका है, लेकिन सबसे पहले तो यही चलते थे और आज भी चल रहे हैं। तो जो ओरिएंट पेपर मिल के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ लाखों मजदूर लोग काम करते हैं, बहुत ही एक ऐसा मशीन यहाँ है जो हमें कागज प्राप्त करवाती है।
जी, और किसी जमाने में ये एशिया का नंबर वन पेपर मिल भी हुआ करता था, है
जी,
ना
जी।
और आपके ही स्थान जहाँ पर आप रहती हैं यानी अनूपपुर, उसके पास ही है शहडोल, है ना, जिसे विराट
जी,
नगर के नाम से कभी जाना जाता था, तो उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को कुछ बता दीजिए।
हाँ, विराट नगरी महाभारत काल की नगरी, राजा विराट थे। महाभारत काल में जो पांच पांडव थे और द्रौपदी थी, वो अज्ञातवास में यहाँ रुके थे, तो भेष बदल कर रुके, तो मतलब राजा विराट के गाय चराया करते थे। ऐसे हाँ। ऐसे एक वर्ष पूर्ण हो गए, तो एक वर्ष पूर्ण होने के बाद गायों को जैसे लड़ाइयां चलती थी, तो किसी ने परीक्षा लिया या कैसे आकर सभी गायों को मतलब छोड़ दिए, तो छोड़ने पर उन्हें रोकने के लिए अब कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो उन सभी गायों को रोक सके। तो वहां पर धनुष का चाप चढ़ाने की बात आई, तो राजा विराट ने ऐसा ऐलान किए कि जो भी इस चाप को चढ़ाएगा वही भगवान का अवतार होगा। तो वहां पर अर्जुन जी चढ़ाए उस चाप को, तो पहचान में आ गए कि ये कोई ऐसे मानव नहीं है, ये भगवान रूप ही कोई है।
हाँ,
तो द्रौपदी रसोईया बनकर रहती थी राजा विराट के घर में।
जी
जी, राजा विराट की पुत्री थी जो मन ही मन अर्जुन जी को भाने लगे थे, तो राजा अर्जुन जी उन्हें बहन के रूप में स्वीकार किया और उनकी पूरी देखभाल की और उनकी रक्षा करने को वचन भी निभाए थे। राजा विराट की नगरी में एक बाण गंगा नाम से प्रसिद्ध है, जो बाण से उत्पन्न हुई थी गंगा धारा।
जी जी, हाँ, नदी, नदी थी,
प्यास लगी थी तो बाण से उत्पन्न किए थे जल। वही बाण गंगा और रतनपुर जो बिलासपुर में है वहाँ की नदी, और ये एक ही है, लेकिन ये ऊपर से नहीं बह के है,
ये विलुप्त स्थिति में है वहाँ पर।
जी जी, तो यहाँ कभी भी ऐसे मान्यता है, देखा जाता है कि यहाँ की मछली और बाढ़ गंगा की मछली और रतनपुर की मछली एक ही है। पहले के युग में वो मछली थी जो नथनी पहनी हुई थी, उस मछली को कोई देखते तो यहाँ बाढ़ गंगा में भी रही और वही मछली
अच्छा
रतनपुर में रही।
ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने हमें बताई, और महाभारत के काल से ही वो स्थान बहुत प्रसिद्ध है, और हमारे जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे उन्हें भी बहुत रुचि आ रही होगी, और जब कभी समय मिलेगा और अच्छा वक्त आएगा, ये कोरोना काल चला जाएगा, तो मुझे लगता है कि हमारे काफी श्रोता वहां घूमने भी जाएंगे।
और जिस स्थान का आपने जिक्र किया, कहीं से भी आए, बाढ़ गंगा और राजा विराट का जो आज पुरातात्विक विभाग में है वो विराट मंदिर प्रसिद्ध है।
हाँ।
और अपना अनूपपुर जिला का जो मां नर्मदा वो भी पुरातात्विक विभाग में है।
जी
जी,
तो जरूर वो घूमेंगे भी उस स्थान को, और आपके माध्यम से उन्हें जानकारी भी बहुत अच्छी हो गई है ना।
जी,
तो चलिए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
हाँ, मेरी गीत के बोल है, फिल्म का नाम है नौरंग, गीत के बोल है, आधा है चंद्रमा रात आदि, रह न जाए तेरी मेरी बात आदि, मुलाकात आदि।
आधा है चंद्रमा रात आदि, आधा है चंद्रमा रात आदि, रह न जाए तेरी मेरी बात आदि, मुलाकात आदि। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा,
चंद्रमा।
प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी, आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी, प्यासा प्यासा भवन प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बारात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा।
पुनः आपका स्वागत है जय मंत्री जी, हमारी और आपकी बात अधूरी नहीं होगी, हम चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो जय मंत्री जी, आप एक प्रगतिशील महिला हैं और भविष्य में मेरे को लगता है कि आपको और भी बहुत सारी इच्छा होगी कुछ कुछ करने की, जिस हिसाब से आपको अलग अलग चीजों में रुचि है, आप खेती किसानी भी करती हैं, आप शिक्षिका भी हैं और आप रेडियो की भी बहुत सुधी श्रोता हैं, ज्ञानी भी हैं, आगे और क्या योजना है आपके जीवन की, आप क्या सोचते हैं?
आप इतने शब्दों से मुझे मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, ये तो आकाशवाणी परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मुझे बोलने का अवसर दिया गया, और आपका भी आभार प्रकट करती हूँ। मैं तो सबसे पहले पढ़ाई के साथ साथ मैं बड़े पद पर जाना चाहती थी, मेरे पिताजी की सपना रही कि मैं बड़े पद पर कार्य करूं। मैं चेहरे से खूबसूरत तो नहीं हूँ, देखे हुए भाई लोग खुद जानते हैं कि मैं कैसी हूँ करके, लेकिन मेरे सपना बहुत लंबी लंबी रहते हैं। और मैं आज एक माँ हूँ, गृहिणी हूँ, अपने परिवार की देखभाल करती हूँ, अपने पति की देखभाल करती हूँ, मेरी सासू माँ है और मैं उनके लिए अच्छा खेती करके अच्छे अनाज पैदावार करती हूँ। साथ ही सबसे पहले मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा धर्म है कि मैं जिस पद पर हूँ उस पद की गरिमा को बनाए रखूं। मैं स्कूल में आने वाले बच्चे को किसी अन्य के बच्चे ना समझो, वो मेरे ही बच्चे हैं, सारे बच्चे मेरे हैं, ऐसी भावना मैं रखती हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी भावना रख के ही आगे बढ़ेंगी आप तो बहुत आगे बढ़ जाएंगी, और आप बढ़ भी रही हैं, और जहाँ चाह है वहाँ राह है। जय मंत्री जी, आप
जी।
जो इच्छाएं आपकी अधूरी रह गई हैं, आपकी तीन तीन बेटियां हैं आप बता रही हैं, और आज बेटी और बेटे कोई किसी से कम नहीं है, है ना
जी? तो मेरी तीन बेटियां हैं, मैंने अपने मन में कभी ऐसा विचार नहीं लाई कि मेरी बेटियां ही बेटियां हैं, मुझे इतनी खुशी है कि मेरी बेटियां हैं। मैं सभी माता पिताओं से आग्रह करती हूँ, कभी भी अपनी बेटियों को बोझ ना समझे, वो अच्छी शिक्षा दें, अच्छी लालन पालन करें उन्हें, उन्हें अच्छे मार्गदर्शन दें, बेटियों को एक बेटे की तरह वो शक्ति माने, बेटियां सबसे बड़ी शक्ति हैं।
बिल्कुल
जी,
और बेटी हर क्षेत्र में आज बेटियां आ रही हैं, चाहे वो सेना का क्षेत्र हो, चाहे वो अंतरिक्ष में पहुंचने की बात हो, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे हर क्षेत्र में बेटियां भी बेटों के साथ कदम में कदम मिलाकर चल रही
हैं। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अभी 2011 में मैं अपने विद्यालय की प्रधानाध्यापक पद पर हूँ, तो मुझे लगा कि मेरे से बड़े टीचर जो हैं वो शाला के प्रमुख रहे
जी,
तो ऊपर से कलेक्टर साहब आए, मैं बोली सर मैं प्रभारी नहीं रहूंगी, मुझे प्रभार से मुक्त दिलाइए, तो वो सर कैसे बोल के गए मुझके ऐसे शब्दों से बोले, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल एक महिला थी ना, ऐसे करके बोले, अंतरिक्ष में जो गई है वो महिला थी ना, और जो काम कर रही है क्या महिलाएं नहीं कर रही हैं? ऐसे करके जैसे खेल खेल में है, अंतरिक्ष में है, राष्ट्रपति बन चुकी है इंदिरा गांधी, एक महिला थी ना, ऐसे करके उन्होंने मुझे उपमा दिए और मेरी तो जुबान ही बंद हो गई।
उन्होंने आपकी जो खूबियां हैं उसको उन्होंने पहचाना होगा और वो जाना होगा कि आप उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकती हैं, आप कर सकती हैं, तभी उन्होंने आपको जिम्मेदारी भी दी होगी, है ना?
जी जी जी।
तो जयमंत्री जी, यहाँ एक और गाना हो जाए, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
हाँ, मैं ये गाना अपनी तीनों बेटियों के लिए सुनना चाहती हूँ। मैं फिल्म का नाम है एक फूल दो माली और गीत के बोल है, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा।
तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। कब से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा।
मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, बहुत ही प्यारा गीत आपने अभी हमको सुनवाया जयमंत्री केवट जी। और सच में जिस तरह का गीत है, हम आपके बेटियों की और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि वे सचमुच आपका नाम रोशन करें और ऊंचे स्थान पर, जिस स्थान पर आप चाहती हैं आपकी बेटियां, वहां पर पहुंचे। बहुत अच्छा लगा जय मंत्री केवट जी हमें आपसे बात करके, आशा है आपको भी हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी।
जी मुझे बहुत पसंद आया, मुझे आपने ऐसा मौका दिया, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी सुनने वाले भाइयों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, प्रणाम, नमस्ते।
आपका भी बहुत 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 धन्यवाद जयमंत्री केवट जी।
जी
तो ये थी हमारी आज की श्रोता जयमंत्री केवट जी। अगली बार एक नए श्रोता के साथ आप सभी से फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी सुजाता शुक्ला को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
अभी आपने सुना कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ थी अनूपपुर मध्य प्रदेश की जयमंत्री केवट और इनसे बातचीत की सुजाता शुक्ला ने।
सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।